पृष्ठ संख्या 82, शेख इब्राहिम जोग, 1789 से 1854 ईस्वी। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके। 19वीं शताब्दी में दिल्ली की उर्दू कविता को पुनर्जीवित करने वाले साहित्यकारों में गालिब, जफर, मोमिन की श्रृंखला में एक और नाम जोग का भी था। उनका पूरा नाम शेख इब्राहिम जोग था। 1789 ईस्वी में जोग का जन्म दिल्ली में एक गरीब सिपाही शेख मुहम्मद रमजान के घर हुआ था, इसलिए उनका जीवन आर्थिक तंगी में व्यतीत हुआ। गरीबी के कारण मदरसे में जाकर इनके पढ़ने लिखने का शौक पूरा ना हुआ, किंतु वे स्वाध्यायी और अत्यंत विनम्र थे। अपनी जन्मजात प्रतिभा और अध्ययनशीलता के चलते उन्होंने इतिहास, दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, संगीत की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के दौरान ही उन्हें काव्य रचना का शौक हुआ। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध शायर शाह नसीर का शिष्यत्व ग्रहण किया। जोग की काव्य प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त थी, इस वजह से वह शीघ्र ही मुशायरों में उनकी गजलों की तारीफ होने लगी, जो उनके उस्ताद को अच्छा न लगा। उन्होंने गजलों में इस्लाह देने की बजाय बेकार कहकर वापस करना आरंभ कर दिया, जिससे तंग आकर जोग ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया और स्वतंत्र काव्य साधना शुरू की। प्रतिभा और लगन के धनी थे ही, इसलिए गुरु के संबंध विच्छेद करके भी चमक गए। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बादशाह अकबर शाह के दरबार में एक कसीदा सुनाया, जिस पर उन्हें खाकनी ए हिंद का खिताब मिला। इतनी कम उम्र में यह खिताब पाना कमाल की बात थी। बाद में बहादुर शाह जफर जैसे बादशाह शायर ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने राज्य का कविराज नियुक्त किया। उनके अन्य शिष्यों में नवाब मिर्जा खां द्वाक, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद जहीरुद्दीन जहीर के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रकृति ने जोग को बुद्धि और मृदु स्वभाव देने में जो दानशीलता दिखाई, शारीरिक व्यक्तित्व देने में उतनी ही बेपरवाही बरती। कद साधारण से कम, रंगत सांवली, चेहरे पर चेचक के दाग, किंतु आंखें चमकीली, बदन में फुर्ती, आवाज सुरीली, संतोष, सौहार्द, प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता, प्रतिमूर्ति जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो उठता। पृष्ठ संख्या 83। उनके जीवन का एकमात्र शौक था कविता करना। जवानी के दिनों में भी कोई बुरी लत ना पाली, मस्जिद में नमाज ही अदा करते रहे। इस कलाम के उस्ताद ने 1854 में 15 दिन बीमार रहकर परलोक गमन किया। मरने के 3 घंटे पहले का यह शेर कहते हैं, जो आज जहाँ से गुजर गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़रत करे। 1857 ईस्वी के गदर में जोग का अधिकांश साहित्य नष्ट हो गया। इस समय उनका जो साहित्य मिलता है उसमें 167 गजलें, 24 कसीदे और कुछ फुटकर कविताएं हैं। मुहम्मद हुसैन आज़ाद के अनुसार उनकी एक मशनवी भी थी जिसमें 500 शेर थे। जोग मूलतः रूपवादी कवि थे। शब्द चयन, वाक्य विन्यास, उक्ति कौशल, मुहावरों के प्रयोग, काव्य नियमों की पाबंदी और भाषा की सादगी व चुस्ती पर बहुत ध्यान देते थे और इस क्षेत्र में अपने जमाने में अद्वितीय थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका भावपक्ष बिल्कुल कोरा था। गालिब की बात, उनका भावपक्ष काफ़ी चमक दमक वाला ना होते हुए भी काफ़ी गंभीर है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनके भावपक्ष का आधार उनकी साध प्रकृति है। संक्षेप में उनका जीवन दर्शन यही है कि आदमी दुनिया में आकर घमंड ना करे, दूसरों के काम आए, किसी का दिल ना दुखाए, खुद खुदा से डरता रहे और किसी से लड़ाई ना करे, सबसे मेल मुहब्बत से रहकर खामोशी और सब्र से जिंदगी बिताना उनका लक्ष्य रहा है। उनकी लगभग हर गज़ल में इस तरह के साधुता पूर्णता निःस्पृहता किस शेर मिलते हैं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर गए पर ना लगा जी तो किधर जाएंगे। नाम मंजूर है तो फौज, असबाब का पुल बना, चाह बना मस्जिदों तालाब का। अतः कहा जा सकता है कि जोक सिर्फ कलाकारी नहीं दिखाते, कला पक्ष के साथ उनका भाव पक्ष भी काफ़ी प्रबल है। जो कुछ उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लिखा वह सब जमा किया जाता तो ना जाने कितनी जिल्दें भर जाती, लेकिन गद्दर में लुटे पिटे काव्य संग्रह के बचे खुचे भाग के आधार पर उर्दू साहित्य में उनका जो स्थान बनता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।